एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं ओरहान पामुक के एक बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास की, स्नो, जिसे तुर्की में कार कहते हैं।
जी, पामुक, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला 2006 में, तुर्की के शायद सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं।
बिल्कुल, और उनके काम में अक्सर वो कश्मकश दिखती है, मतलब आधुनिक तुर्की पहचान की तलाश।
हाँ, वो जो फंसी हुई लगती है पूर्व और पश्चिम के बीच,
परंपरा और आधुनिकता के बीच, आस्था और
हाँ धर्मनिरपेक्षता,
ये सारे धागे उनके लेखन में उलझे हुए मिलते हैं।
और उनकी शैली भी, उसमें वो नई तकनीकें इस्तेमाल करते हैं लेकिन पुरानी दास्तानों का रंग भी रहता है। और वो हुजून,
हाँ हुजून, वो एक खास तरह की उदासी है ना, जैसे पूरे शहर की, पूरे समाज की उदासी, वो उनके उपन्यासों में महसूस होती है। सही कहा। और स्नो जो 2002 में आया, ये शायद उनका सबसे सीधा राजनीतिक उपन्यास है।
हाँ, और इस पे काफी मतलब बहस भी हुई थी।
बिल्कुल, ये कहानी है 1990 के दशक के तुर्की की, वो दौर जब बहुत तनाव था देश में,
धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक पहचान को लेकर।
हाँ, और यूरोप की तरफ जाना है या अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, ये सब सवाल।
और ये सिर्फ बहस नहीं थी, कभी कभी हिंसा भी हो जाती थी इस्लामी आंदोलनों और सेक्युलर ताकतों के बीच।
तो माहौल काफी गर्म था उस वक्त, और किताब को लेकर तुर्की में राय भी बंटी हुई थी।
हाँ, कुछ को बहुत पसंद आई, कुछ ने कहा कि ये थोड़ा सेक्युलर नजरिए से ज्यादा लिखा गया है।
लेकिन दुनिया भर में इसे एक बहुत अहम राजनीतिक उपन्यास माना गया।
ठीक, बिल्कुल।
तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास की परतों को खोलें। कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं, और पामुक क्या बड़े सवाल उठा रहे हैं।
कहानी का जो केंद्र है वो है एक शहर कार्स और एक कवि के।
हाँ, के ये हमारा मुख्य पात्र है।
जी,
एक कवि जो जर्मनी में रहता है 12 साल से राजनीतिक निर्वासन में,
फिर वो तुर्की लौटता है इस्तांबुल, और फिर एक मिशन पर निकल पड़ता है।
हाँ, एक अजीब सा मिशन, पूर्वी तुर्की में एक दूर दराज बर्फीला शहर है कार्स, वो वहां जा रहा है।
कहने को तो एक पत्रकार की हैसियत से।
हाँ, कहने को तो वो जांच करने जा रहा है कुछ लड़कियों की आत्महत्याओं की,
वो लड़कियां जिन्हें हेडस्कार्फ पहनने की वजह से स्कूल से रोक दिया गया था।
जी,
और साथ ही आने वाले चुनावों पर रिपोर्ट करने, ये उसका ऑफिशियल काम है।
लेकिन असल मकसद कुछ और है ना।
हाँ बिल्कुल, असल मकसद है इपिक से मिलना।
इपिक?
इपिक, जिससे वो अपने कॉलेज के दिनों में प्यार करता था, वो अब कार्स में रहती है तलाक के बाद।
अच्छा, तो का एक तरह से अपने अतीत को या शायद एक मुमकिन भविष्य को तलाशने जा रहा है।
हाँ, कुछ ऐसा ही, प्यार, यादें, शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद।
और जैसे ही वो कार्स पहुंचता है, एक और किरदार कहानी में दाखिल होता है, बर्फ।
हाँ, बर्फ, लगातार गिरती हुई बर्फ,
और इतनी कि कुछ ही वक्त में शहर बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है।
जी, और ये बर्फ सिर्फ मतलब सिर्फ मौसम नहीं है।
नहीं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
हाँ,
एक प्रतीक है।
बिल्कुल,
एक पर्दे की तरह।
हाँ, शहर को ढक लेती है, बाहरी दुनिया से काट देती है,
और शहर के अंदर जो तनाव है उन्हें शायद और उभार देती है।
हाँ, ये अलगाव का प्रतीक है, कहीं कहीं पवित्रता का भी, लेकिन ये सच को ढकने वाली चीज भी बन जाती है, यादों को दबाने वाली।
और का के लिए तो ये कुछ और भी बनती है, प्रेरणा।
हाँ, उसके लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी बन जाती है। अजीब बात है लेकिन है।
और इस बर्फ से ढके अलग थलग पड़े कार्स शहर में, जैसे पूरा तुर्की इससे मटाया हो।
सही कहा, एक छोटा तुर्की बन जाता है वो शहर, हर तरह के लोग वहां फंस गए हैं।
कौन कौन है वहां?
देखिए, कट्टर सेक्युलर हैं जो अतातुर्क के आदर्शों को मानते हैं,
जोशीले इस्लामवादी भी हैं,
कुर्द राष्ट्रवादी भी हैं। हाँ, उनकी अपनी लड़ाई है, और सरकारी जासूस भी हैं जो सब पर नजर रखे हुए हैं।
तो पूरा शहर एक अखाड़ा बन गया है जहां तुर्की के सारे अंदरूनी झगड़े खुलकर सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल, और इसी माहौल में का किरदार बहुत दिलचस्प हो जाता है।
हाँ, वो कवि 42 साल का, पश्चिमी सोच वाला,
लेकिन कहीं का नहीं लगता, ना जर्मनी में घर जैसा महसूस करता है, ना तुर्की में।
अकेलापन है उसमें और एक बौद्धिक शक।
हाँ, हमेशा सवाल करता रहता है, वो सेक्युलर है पर एक आध्यात्मिक खालीपन भी है उसमें।
और वो कार्स में क्या ढूंढ रहा है?
तीन चीजें, कविता, प्यार और शायद ईश्वर।
अच्छा, तो क्या उसे ये मिलते हैं? कार्स में उसका अनुभव कैसा रहता है?
वो इपेक से मिलता है, उनके बीच फिर से एक खिंचाव पैदा होता है।
लेकिन शहर का माहौल,
वो बहुत घुटन भरा है, उसे तस्लीमे नाम की लड़की की आत्महत्या के बारे में पता चलता है।
वही लड़की जिसने हेडस्कार्फ उतारने से मना कर दिया था।
हाँ, और खिड़की से कूद गई। ये घटना जैसे एक इशारा है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे विचारधाराओं की लड़ाई में इंसान पिस जाते हैं।
और फिर बर्फ और तेज हो जाती है।
हाँ, शहर पूरी तरह से बंद, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं।
और इसी बंदिश में, इसी तनाव के बीच का के साथ कुछ अनोखा होता है।
जी बिल्कुल, सालों बाद वो फिर से कविता लिखने लगता है।
कमाल है, सालों से एक शब्द नहीं लिखा था।
और अब उस बर्फीली कैद में जैसे कोई बांध टूट गया हो, कविताएं फूट पड़ती हैं। 19 कविताएं लिखता है वो।
19? और उसे क्या लगता है ये कहाँ से आ रही हैं?
उसे लगता है ये कोई दैवीय प्रेरणा है, ईश्वर की तरफ से।
और वो उनकी बनावट को भी खास मानता है।
हाँ, वो कहता है ये बर्फ के क्रिस्टल जैसी हैं, सिमेट्रिकल। हर कविता का एक केंद्र है, जैसे स्नोफ्लेक का होता है।
लेकिन यहाँ एक अजीब बात है ना, एक तरफ ये रचनात्मकता, ये आध्यात्मिक अनुभव,
और दूसरी तरफ,
दूसरी तरफ उसकी राजनीतिक समझ बहुत कच्ची है, भोलापन है उसमें।
हाँ, उसे अंदाजा ही नहीं कि शहर के लोग उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हर गुट,
वो खुद को क्या समझता है?
वो शायद खुद को बस एक कवि समझता है या ज्यादा से ज्यादा एक शांति दूत।
लेकिन असल में वो एक मोहरा बन जाता है,
बिल्कुल अनजाने में ही सही, और यही चीज उसे ले डूबती है।
उसे प्यार और कविता में एक छोटी सी खुशी मिलती है।
हाँ, एक बहुत गहरी लेकिन क्षणिक खुशी, और उसे बचाने के चक्कर में वो एक ऐसा काम कर बैठता है
जिससे वो सब कुछ खो देता है।
सब कुछ, और पहले से भी ज्यादा अकेला रह जाता है। ये उसकी त्रासदी है।
ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या कला, क्या निजी खुशी राजनीतिक हकीकत से बच सकती है?
शायद नहीं, या बहुत मुश्किल से।
का के अलावा दूसरे किरदार भी कहानी को बहुत दिलचस्प बनाते हैं। इपिक मिसाल के तौर पर।
हाँ, इपिक वो सिर्फ का की प्रेमिका नहीं है, वो जैसे आज की तुर्की महिला का प्रतीक है।
उलझी हुई।
हाँ, खूबसूरत है, समझदार है, पर उदास है, शहर से, अपने पिता के होटल से बंधी हुई।
लेकिन शायद निकलना भी चाहती है।
हाँ, वो का के पश्चिमी आकर्षण और अपनी जड़ों के बीच जैसे फंसी हुई है।
और आखिर में,
आखिर में वो का के साथ नहीं जा पाती, काटस्ते में ही रह जाती है।
ये क्या दिखाता है? इतिहास का बोझ, समुदाय का।
हाँ, शायद यही सब। वो जैसे तुर्की के अनसुलझे सवालों का चेहरा बन जाती है।
और उसकी बहन है कादिफे, वो तो बिल्कुल अलग है इपेक से।
जमीन आसमान का फर्क। कादिफे हेडस्कार्फ वाली लड़कियों की नेता है।
अपने विश्वासों पर बहुत पक्की।
हाँ, धार्मिक भी, राजनीतिक भी। और उसका रिश्ता है ब्लू से।
ब्लू शहर का सबसे खतरनाक इस्लामवादी आतंकवादी।
जी,
तो कादिफे राजनीतिक इस्लाम का एक मजबूत चेहरा है, वो झुकने वालों में से नहीं।
उसकी कहानी क्या दिखाती है? विचारधारा के लिए कुर्बानी।
हाँ, कि लोग अपने विश्वासों के लिए क्या हद तक जा सकते हैं, क्या कुर्बान कर सकते हैं।
और ये ब्लू, जिसका असली नाम ईसा है,
क्या वो सिर्फ एक विलन है?
नहीं, पामुक उसे सिर्फ एक विलन की तरह नहीं दिखाते। हाँ, वो कट्टर है, हिंसक है,
लेकिन
वो बुद्धिमान भी है, अपने विश्वासों को लेकर बहुत साफ है।
लोग उसे डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं।
हाँ, दोनों। वो सेक्युलर ताकतों का मुख्य दुश्मन है। का के साथ उसकी लंबी बहसें होती हैं।
किस बारे में?
ईश्वर, पश्चिम, विश्वास, इन सब पर। वो जैसे निश्चितता का प्रतीक है, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ अनिश्चित है,
चाहे वो निश्चितता खतरनाक ही क्यों ना हो।
बिल्कुल, पामुक उसे एक जटिल इंसान की तरह दिखाते हैं, जिसका अपना एक वर्ल्ड व्यू है, भले ही वो हिंसक हो।
और एक और बहुत ही नाटकीय किरदार है, सुनाई जईम।
हाँ, सुनाई जईम, वो बूढ़ा एक्टर
जो कभी अतातुर्क के सेक्युलर विचारों का प्रचार करता था थिएटर के जरिए।
जी, गांव गांव जाकर। और अब वो कार्स को देखता है कि वो पिछड़ेपन और धार्मिक कट्टरता में डूब रहा है,
और उसे ये बर्दाश्त नहीं होता।
बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका तरीका है, वो बहुत अजीब है। वो कला और जिंदगी के बीच की लाइन मिटा देता है।
वो नाटक करता है मेरा वतन या मेरा हेड स्कार्फ।
हाँ, और उसी नाटक के दौरान वो सैनिकों के साथ मिलकर असल में तख्ता पलट कर देता है।
कमाल है, उसे लगता है वो हकीकत में भी हीरो है।
हाँ, उसे लगता है वो गणतंत्र को बचाने वाले एक असली नाटक का हीरो है। वो स्टेज और असल दुनिया में फर्क ही नहीं कर पाता।
ये तो बहुत डरावना लगता है। ये दिखाता है कि सेक्युलरिज्म भी जब कट्टर हो जाए
तो वो फाशीवाद जैसा बन सकता है,
और विचारधारा कैसे एक पागलपन भरे थिएटर में बदल सकती है, जिसके नतीजे भयानक होते हैं।
बिल्कुल, सुनाई जईम का किरदार यही दिखाता है।
और इस सारे हंगामे में एक और मासूम किरदार भी है, नसीब।
हाँ, नसीब, वो नौजवान धार्मिक छात्र
जो धर्म के साथ साथ सेक्युलर साहित्य भी पढ़ता है, साइंस फिक्शन का शौकीन है।
वो जैसे एक उम्मीद जगाता है कि शायद दो दुनियाओं के बीच पुल बन सकता है।
लेकिन
राजनीतिक कट्टरता उसे भी निगल जाती है, उसका हश्र भी दुखद होता है।
तो कहानी का क्लाइमैक्स ये तख्ता पलट ही है जो नाटक के दौरान होता है।
हाँ बिल्कुल, थिएटर में लोग जमा हैं नाटक देखने,
और अचानक असली गोलियां चलने लगती हैं।
नकाबपोश सैनिक, सुनाए जईम का ऐलान कि शहर पर कब्जा कर लिया है, मार्शल लॉ।
और इसी खौफ के माहौल में का अपनी पहली कविता लिखता है स्नो।
जी, हिंसा के बीच रचनात्मकता, ये भी एक विरोधाभास है।
शहर बंद है, कर्फ्यू लगा है, का क्या कर रहा है इस दौरान?
का जैसे दो दुनियाओं में जी रहा है।
कैसे?
एक तरफ वो इपेक के प्यार में डूबा है, उसे फ्रैंकफर्ट ले जाने के सपने देख रहा है,
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ उसके अंदर कविताओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। वो शहर में घूमता है, लोगों से मिलता है।
ब्लू से भी मिलता है?
हाँ, ब्लू से गुप्त मुलाकात होती है एक पेस्ट्री शॉप में, लंबी बहस होती है।
और का ब्लू का संदेश पश्चिम तक पहुंचाने का वादा करता है?
हाँ, वो खुद को मध्यस्थ समझता है, उसे लगता है वो शांति स्थापित कर सकता है,
पर असल में वो इस्तेमाल हो रहा है।
हर किसी के हाथों, उसे ये समझ नहीं आता।
और फिर आता है वो पल, वो विश्वासघात।
हाँ, तीसरे दिन सुनाई ज़ईन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है।
और कादिफे को सरेआम हेड स्काफ उतारने पर मजबूर करता है।
जी, वो राजनीतिक क्रूरता और अपमान का चरम क्षण है। और उसी वक्त का को लगता है
कि अगर ब्लू रास्ते से हट जाए
तो एपिक उसके साथ चली जाएगी। उसे लगता है ब्लू ही रुकावट है।
और अपनी निजी खुशी के लिए,
अपनी निजी खुशी को पाने की उस तीव्र इच्छा में वो गुमनाम तरीके से अधिकारियों को ब्लू के ठिकाने की खबर दे देता है।
और ब्लू
ब्लू पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है।
का को लगता है रास्ता साफ हो गया।
हाँ, बर्फ भी पिघलने लगती है, सड़कें खुलने लगती हैं, लेकिन
उसका राज खुल जाता है।
हाँ, एपिक को पता चल जाता है और वो नफरत से भर जाती है। वो का को ठुकरा देती है
तो का का सपना टूट गया।
पूरी तरह। वो कार से जाने वाली पहली बस पकड़ता है अकेला।
उसके पास सिर्फ उसका सूटकेस है और
कविताओं की नोटबुक।
हाँ, उस छोटी सी शानदार खुशी का सबूत जिसे उसने खुद ही तबाह कर दिया।
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक उपसंहार भी है।
जी, 4 साल बाद का एक कथावाचक है जिसका नाम ओरहान है।
जो शायद खुद पामुक का ही साहित्यिक रूप है।
लगता तो यही है।
वो कार्स जाता है का की कहानी को समझने।
उसे क्या पता चलता है?
उसे पता चलता है कि का की फ्रैंकफर्ट में हत्या हो गई थी,
शायद ब्लू के लोगों ने बदला लिया।
शायद, ये साफ नहीं कहा गया। और फिर ओरहान उन 3 दिनों की कहानी को दोबारा जोड़ता है,
कैसे?
का की कविताओं से, उसकी नोटबुक से, और जो लोग बच गए हैं उनसे बात करके, इपेक, कदीफे, सुनाई ज़ईन।
ये जो कथावाचक खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है, इसे मेटाफिक्शन कहते हैं, है ना?
जी, मेटाफिक्शन। कहानी खुद कहानी बनने की प्रक्रिया पर भी बात करती है।
ये क्या करता है उपन्यास में?
ये स्मृति पर, सच पर और कहानी कहने की मुश्किलों पर जोर देता है। क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान सकते हैं? क्या किसी घटना को लिखना उसे बदल नहीं देता?
उपन्यास को और गहरा बना देता है ये।
हाँ,
तो अगर हम अब उपन्यास के मुख्य विषयों पर नजर डालें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो वही लगता है, सेक्युलरिज्म बनाम इस्लामाबाद।
हाँ, ये केंद्रीय संघर्ष है और पामुक दिखाते हैं कि कैसे दोनों तरफ की कट्टरता
समाज को बांटती है, हिंसा लाती है।
बिल्कुल, हेडस्कार्फ एक बड़ा प्रतीक बन जाता है इस लड़ाई का।
और उपन्यास किसी का पक्ष नहीं लेता।
नहीं, वो दोनों तरफ के पाखंड और कट्टरता को दिखाता है। दिखाता है कि कैसे विचारधाराएं इंसानियत को भूल जाती हैं।
दूसरा बड़ा थीम पूर्व बनाम पश्चिम की पहचान का संकट।
हाँ, का की अपनी उलझन और कार शहर का हाल, दोनों इसी को दिखाते हैं।
पामुक जैसे सवाल करते हैं कि क्या ये चुनाव जरूरी भी है, पूर्व या पश्चिम?
हाँ, शायद असल सवाल इनके बीच कोई रास्ता तलाशने का है जो किसी को मिल नहीं रहा।
कलाकार की भूमिका पर भी उपन्यास सोचता है, का और सुनाए ज़ईन के जरिए।
हाँ, क्या कलाकार या बुद्धिजीवी राजनीति से अलग रह सकता है?
उपन्यास का जवाब नहीं लगता है।
हाँ, का की कोशिश नाकाम होती है और सुनाए ज़ईन दिखाता है कि कला कैसे खतरनाक हथियार भी बन सकती है।
और का की जो निजी तलाश है, ईश्वर, अर्थ, खुशी,
हाँ, कविता उसके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव जैसी है, लेकिन क्या वो उसे बचा पाती है?
शायद नहीं। निजी खुशी की तलाश भी राजनीतिक माहौल से अछूती नहीं रहती।
प्यार भी यहाँ उलझ जाता है, का और इपेक का रिश्ता भी।
उपन्यास में थिएटर प्रदर्शन का बार बार आना,
वो दिखाता है कि राजनीति कितनी बार सिर्फ एक दिखावा बन जाती है। लोग अपनी भूमिकाएं निभा रहे होते हैं,
असलियत और दिखावे का फर्क धुंधला हो जाता है।
बिल्कुल,
क्या कोई भी किरदार पूरी तरह असली है, ये सवाल उठता है।
और अकेलापन, निर्वासन, ये हुजून।
हाँ, वो उदासी पूरी कहानी में फैली है। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक रूहानी अकेलापन भी है। तो कुल मिलाकर ये उपन्यास पाठक पर कैसा असर छोड़ता है? कोई आसान या सुकून देने वाली कहानी तो नहीं है ये।
बिल्कुल नहीं, इसे पढ़कर एक गहरी उदासी महसूस होती है, एक बेचैनी।
किरदारों के दर्द से जुड़ाव महसूस होता है, भले ही हम उनसे सहमत न हों।
हाँ, ये तुर्की की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करता है, और शायद दुनिया में कहीं भी होने वाले ऐसे संघर्षों पर भी।
ये आसान जवाब नहीं देता, बल्कि गहरे सवाल छोड़ जाता है।
विश्वास क्या है, शक की क्या कीमत है? कट्टरता में ज्यादा खतरा है या किसी चीज में विश्वास न कर पाने में?
ये कहानी जैसे दिखाती है कि कैसे विचारधाराओं की कट्टर लड़ाई इंसानी रिश्तों को, यहाँ तक कि निजी खुशी की उम्मीदों को भी तबाह कर सकती है।
और ये भी कि जब समाज इस तरह बढ़ जाता है तो प्यार, कला और आस्था जैसी जो नाजुक चीजें हैं वो भी महफूज नहीं रह पाती।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।